ओम शांति। इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय उसमें इतना बड़ा विशाल वट वृक्ष जैसा उसका फाउंडेशन एक पौधे के रूप में हुआ था और उस फाउंडेशन में जो हमारे पूर्वज थे उस पूर्वजों की प्रेरणा और उसकी वो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे उसमें से आज हम देखेंगे कि उस फाउंडेशन में चंद्रस दादा उसके जीवन कहानी के ऊपर थोड़ा सा उनका अनुभव भी उनका बाबा के सत का अनुभव भी उनकी जीवन कहानी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ऐसे चंद्रस दादाजी को सब बाबूजी कहते थे। उसका जन्म जो हुआ था वो हैदराबाद सिंध में हुआ था और जहां ब्रह्मा बाबा मम्मा और दादी और दीदी वो जहां भी रहते थे वहां निकट में चंद्रस दादा भी रहता था। उन्होंने बताया था कि बचपन उनका बहुत ही दुखमय था क्योंकि ऐसे तो धनी परिवार के थे। वहां जो भी सिंध में रहते थे वो भाई इतने बहुत पढ़े हुए नहीं रहते थे, थोड़ा सा पढ़ते थे और बिजनेस करने में लग जाते थे। तो बिजनेस करने के लिए भारत से दूर दूर सिंगापुर जाते थे, हांगकांग, जापान में। तो उनका पिताजी भी जापान हांगकांग सब जगह पे जाते थे, बहुत पैसा कमाते थे। दो तीन साल वहां रहते थे, सिर्फ 6 मास के लिए भारत में आते थे। लेकिन चंद्रस दादा की 6 मास ही हुआ था और उसके पिताजी ने वहां जापान में भूकंप हुआ था उसमें उनका देह अवसान हो गया। उसके बाद जब 6 साल का हुआ तभी माता ने शरीर छोड़ दिया तो माता पिता की छत्र छाया उसके ऊपर से चली गई। उसके बाद माँ बाप के सिवाय रहना कितना दुखमय होता है। वो नानी के पास रहते थे, नानी का घर भी बाबा के घर के नजदीक नजदीक ही होता था। सबसे पहले जो सत्संग शुरू होता था तो चंद्रस दादा नानी ने उसको बोला कि यहाँ सत्संग होता है तो हम जाएंगे। उनको इतना मालूम नहीं था लेकिन वो पढ़ते भी थे और साथ साथ क्योंकि इतना दुखी रहते थे तो परमात्मा की तरफ बुद्धि चली गई और दूसरी पढ़ाई में। जैसे बच्चे होते हैं खेल कूद में रहते थे लेकिन इसका जीवन नहीं था, बचपन था ही नहीं, जैसे बहुत दुखी था। तो पढ़ाई और परमात्मा की याद, भगवान की याद दोनों ही उनके जीवन में जल्दी से आ गया था, वैराग्य आ गया था। तो नानी के साथ साथ जब सत्संग में जाते थे तो शुरुआत के सत्संग में बहुत ही ऐसी बातें थी जो शुरुआत में देखते थे तो समझ में नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उन आसपास भी थोड़ी थोड़ी बातें भी सुनने में आती थी। तो नानी को बोला मैं अभी नहीं आऊंगा, लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर से उसको अंदर से आकर्षण हुआ कि मैं जाऊं। पढ़ने में बहुत होशियार था वो और इतना होशियार था कहते हैं कि वो जल्दी से उसने मैट्रिक पास कर ली। लेकिन बाबा के पास जब जाते थे तो धीरे धीरे उसको संगठन में अच्छा लगा। ओम मंडली में वो जाते थे, वहां साक्षात्कार सब कुछ होता था, देखते थे। सत्संग में बाबा ईश्वरीय मर्यादाएं पवित्रता की बातें करते थे तो उनको भी बहुत अच्छा लगता था। तो ओम मंडली में उसका जाना वहां से शुरू हुआ और फिर उसका धीरे धीरे क्या हुआ कि ओम मंडली जो है ना उसके एंटी ओम मंडली बहुत ही ऑपोजिट, क्योंकि ईश्वरीय मर्यादा पवित्रता के बारे में तो बाबा का जो सत्संग चलता था तो बहुत ही लोग जो वहां बाहर गए थे 2-3 साल के बाद आते थे वो लोगों ने देखा पवित्रता, खान पान की शुद्धि वो उसको पसंद नहीं आई तो हंगामा होता था, झगड़ा बहुत होता था। तो झगड़ा होता था तो उसके बाद बहुत ही हंगामा होता है, बढ़ता ही चला। लोगों ने कहा कि ये बंद करो। और उसी समय चंद्रस दादा वो कहते हैं कि मेरी आंखों के सामने मैंने सब कुछ देखा है, फिर पिकेटिंग हुई, ये सब कुछ हुआ। लेकिन फिर बाबा ने वो स्थान बदल दिया, जसोदा भवन में था उससे बदले दूसरे भवन में लेके गए, जहां बहुत अच्छा था, थोड़ा दूर भी था, सिटी से बाहर था, तो वहां सत्संग चालू हुआ। लेकिन वहां भी लोगों ने बहुत तंग करना शुरू किया, और वहां जो वहां चीफ मिनिस्टर था उसके पास गए और कहा कि ये आश्रम बंद करा दो या ओम मंडली को बंद करा दो। तो उन्होंने कहा कि ओम मंडली तो कैसे बंद करा, तो पिकेटिंग बहुत कुछ हुआ। उन्होंने बोला कि आप अगर आप बंद नहीं कराओगे तो हम सब इस्तीफा दे देंगे, रिजाइन कर देंगे। तो थोड़ा उनको अंदर से हुआ कि ये कैसे चलेगी मिनिस्ट्री। तो उन्होंने बाबा को बताया कि बाबा ये तो अभी हमारी इज्जत का सवाल है, तो आप कुछ करो। तो बाबा ने कहा चलो ये ओम मंडली है उसका नाम चेंज कर देते हैं। तो तभी बाबा ने उसका नाम चेंज किया, ईश्वरी विश्वविद्यालय रख दिया। और ईश्वरी विश्वविद्यालय रखा तो उसके कारण ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, उसके कारण क्या हो गया, भाई बहन का जो नाता था वो सिद्ध हो गया। तो ऐसे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का नाम पड़ा। लेकिन चंद्रास दादा को बहुत ही तकलीफ होती थी, क्योंकि वो अपना माता पिता तो था नहीं, तो जिसके पास रहते थे वो इसका जीजा था, वो बहुत ही जब भी वो सत्संग में जाता था तो उसकी पिटाई बहुत करता था, इतनी पिटाई करता था कि वो, और फिर वो खान पान का शुद्धि तो उसको अंदर से ये भी होता था कि मैं कैसे ये सब कुछ करूं, तो बहुत पिटाई होती थी। जब भी जाकर के आता था तो खाता नहीं था घर का, तो वो अपनी एक दूध और रोटी वही खाता था, तो कमजोर भी थोड़ा हो गया था। तो उन्होंने कहा कि अभी क्या करे। एक बार है ना उसको सपना आया था कि जैसे बाबा कह रहा है तुमको, अभी मैं इसकी युक्ति बताता हूँ। तो शिव बाबा ने उसको ब्रह्मा बाबा द्वारा युक्ति बताई कि आप है ना तो ऐसा गवर्नमेंट में जाके कहना कि अगर मेरे को अब बहुत पिटाई करोगे मेरा शरीर चुट जाएगा तो आपके ऊपर केस लग जाएगा। तो फिर वो लोग डर गए, तो उन्होंने बोला पिटाई करना छोड़ दिया। लेकिन फिर भी उसको वहां जाने का, वो छिप छिप के जाता था, और उसी समय इतना बंधन था, बड़ी दीदी भी छिप छिप के जाती थी, तो बड़ी दीदी के साथ भी उसका बहुत अच्छा गहरा कनेक्शन था। जब भी छुट्टियां होती थी तो बड़ी दीदी के साथ चला जाता था, रहता था, तो घर वाले बहुत तंग करते थे, लेके आते थे। एक बार क्या बहुत ही हंगामा हो गया, तो फिर बाबा ने क्या किया कि अपना स्थान है ना सिंध कराची से, सिंध हैदराबाद से कराची में स्थान चेंज किया। तो कराची तो बहुत दूर था, तो यहाँ से तो उनके पीछे पीछे बहुत लोग भागे, लेकिन चंद्रस दादा तो रह गया, वो भाग नहीं सका। और जो भी गए ना उसका वारंट आता था, और बाबा इतना कायदे से चलता था कि चिट्ठिया लाए नहीं तो वारंट आता था, तो बाबा कहता था ये है, तो उनको लेकर के घर में लोग लेके आ जाते थे। तो ऐसे चंद्रस दादा एक बार छिप छिप के चला गया, उसका भी वारंट आया तो बोला ये बच्चा है, तो बाबा ने उसी समय उसको भेज दिया। तो फिर उसकी फिर से बहुत ही उसको तकलीफ पड़ी, तो बोला ये बस भोजन खाना पड़ेगा, ये सब कुछ बातें बहुत हुई। लेकिन फिर एक बार तो छिपके चला ही गया, तो बाबा ने उसको रख दिया, समर्पण कर दिया। तो फिर वहां उसके पहले भी बॉर्डिंग बन गई थी, इसके पहले बॉर्डिंग बनी थी, लेकिन बॉर्डिंग में उसका प्रवेश नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद में मतलब कि सब कुछ ठीक हो गया। तो ये उसके बाद साक्षात्कार की धूम चली, बहुत साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार में स्वर्ग की बातें बताते थे, फिर साक्षात्कार में और क्या बताते थे, स्वर्ग में कैसा होगा, देवी देवता की चलन कैसी होंगी, वहां का खान पान कैसा होगा। फिर कोई गलती करते थे तो उसकी संदेश पुत्री जाती थी तो उसकी सजाए सुनाते थे। तो उसी समय इतना तो काम नहीं था ना, तो क्या करते थे, उसका रिहर्सल करते थे, एक नाटक बनाते थे। तो ये सब सजाएं कैसे, मतलब कि लोगों को मिलती है, उसका साक्षात्कार नाटक द्वारा कराते थे। तो चंद्रास दादा उसी समय, उस शुरुआत में तो उसका नाम चंद्रास दादा नहीं था, चंद्रास भाई नहीं था, उसका नाम माधव था, माधव लौकिक नाम ऐसा था। तो अभी एक बार जब संदेश पुत्री को साक्षात्कार हुआ, उसमें झाड़ का चित्र उसको दिखाई दिया, और ये उल्टा झाड़ जो है वो ऐसा दिखाई दिया कि जिसमें सभी के जो सिर है वो लटकते हुए थे। तो उसने बाबा ने बाबा को बताया, बाबा ऐसा कैसा झाड़ मैंने देखा। बाबा ने उसको समझ लिया और बाबा ने विश्व रतन दादा के साथ बैठ करके उसको बराबर समझाया कि चित्र आपको बनाना है। तो वो उसी समय है ना, विश्व रतन दादा की मतलब की आर्ट थी ऐसे बनाने की। तो बाबा ने उसको काम दिया, तो उसने झाड़ करेक्शन सब कुछ करके बाबा को बताया। तो बाबा ने कहा कि ये थोड़ा करेक्शन भी कर दिया। फिर चंद्रस दादा की एक ड्यूटी थी बाबा के साथ उसकी मालिश करने की। तो जब झाड़ का चित्र बहुत उसी समय ऐसा ऑफिशियल नहीं रहते थे, तो पूछा चंद्रस दादा को कि देखो इसमें कोई कमी है। तो बाबा, नहीं आपने जो किया वो तो राइट ही है, लेकिन ये सिद्ध कैसे होगा, झाड़ है लेकिन रिपीटेशन का तो उसमें कुछ आता नहीं है। तो फिर बाबा ने पूछा तो रिपीटेशन कैसे होगा। तो फिर इसने गोला एक बनाया, गोला बना के जैसे मतलब कि ठीक ठीक गोला नहीं था, ऐसे बना के बाबा को बताया कि इसमें ये भी होना चाहिए। तो बाबा ने उसको बोला तो आप तो बहुत बुद्धिमान हो। तो जैसे चंद्रास नाम उनको दे दिया, तो चंद्रास का नाम हमने शास्त्रों में तो नहीं सुना था, लेकिन उसमें बताया कि चंद्रास जो मतलब कि शास्त्रों में उसका बहुत गायन है, तो बाबा ने उसको चंद्रास नाम दिया। तो उसी समय से उसका चंद्रास नाम दौड़ पड़ा। उसके बाद क्या हुआ कि गुलझार दादी जब संदेश लेके जाती थी, तो एक बार ऐसा हुआ कि बहुत सारा नाम आने लगा। वो ऐसे ट्रांस में गई और बहुत सारे नाम लेके आई, ट्रांस में ही बैठी थी, नाम शुरू किया। और उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात आई, पाकिस्तान हिंदुस्तान। तो उसी समय कहते थे कि वहां तीन ही भाई थे, तो चंद्रास दादा तो साइकिल लेके चलता था। तो कहते इतना हंगामा होता था, तो हमको तो मालूम पड़ता नहीं था। तो बाबा बोलता था जाओ चक्कर लगा के आओ बच्चे, तो वो साइकिल लेके एक चक्कर लगा के आ जाते थे। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब भी बंटवारा हुआ, तभी भी मतलब कि इतना बाबा ने साक्षात्कार कराया था उन लोगों को, तो बाहर की कोई भी चीज, बाहर का कुछ भी उसको मालूम ही नहीं पड़ता था। लेकिन फिर भी फिर वहां से पाकिस्तान से भारत में ट्रांसफर होने के लिए उन्होंने जब बाबा का संदेश आया, तो उसी समय सामान जब बांधा तो बहुत सारा सामान था। चंद्रस दादा कहते हैं कितना सारा सामान था, साइकिल बहुत कुछ था, लेकिन बहुत गाड़ियां नहीं थी। तो लेकिन वहां से एक गाड़ी और कुछ साइकिलें लेके मतलब कि वह निकले। फिर उनकी एक ड्यूटी और भी थी, मालिश तो करते थे लेकिन थोड़ा ध्यान भी रखते थे यज्ञ का। तो जब यहाँ जब आए माउंट आबू में, तो ब्रिज कोठी में सबसे पहले वहां आए, तो बाबा ने उनको और एक ड्यूटी दी थी। बाबा कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करता था, तो वो इतना कहते मैं इतना होशियार नहीं था, मैं कोई इंजीनियर नहीं था, लेकिन बाबा मुझे सिखाता था। तो उसी समय क्या हुआ था कि ईंटें तो यहाँ थी नहीं, कुछ भी नहीं था, तो कहाँ से लाए ईंटें। तो ये पत्थर जो है ना, पत्थर तोड़ने वाले भाई को बुलाते थे, पत्थर टूटता था और पत्थर लगा देते थे उस रीति से। उसके बाद जब यहाँ मतलब कि ये पोखरा जो वहां आए, फिर पांडव भवन में आए, तो कंस्ट्रक्शन का काम उनको दिया लेकिन कुछ आता नहीं था, लेकिन बाबा उनको बहुत गाइड करता था। तो कहते थे वो जो आकरा भट्टा है ना नीचे, तो यहाँ से पत्थर तोड़ तोड़ के वहां भेजते थे और पकते थे, वहां पकते थे और फिर उसको मशीन में कुछ ये करते थे और वो यहाँ लाते थे और मिट्टी के साथ उसको लगा देते थे। आपने देखा हम यहाँ जब भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम में कोई अभी पुराना नया बनता है ना, तो तोड़ने में इतनी तकलीफ होती है ना, इतना पत्थर निकालना होता है, इतनी जगह तो इतना सारा पत्थर निकल जाता है और इतना मजबूत है, जब भी सीमेंट भी नहीं उसमें, तो फिर भी। तो ये चंद्रस दादा ने बताया कि ऐसा बाबा कंस्ट्रक्शन करता था। तो बाबा जब होता था तभी हिस्ट्री हॉल का और ट्रेनिंग सेंटर उसका हुआ था। फिर उन्होंने बताया कि फिर दादियां जो थी वो इतने 14 साल तो पूरा हो गए थे, बेगरी पार्ट चला, बेगरी पार्ट में भी बहुत तकलीफ होती थी। तो वो कहते हैं मैं जब बाबा की मालिश करता था तो बाबा को पूछता था कि बाबा मैं बाहर जाके थोड़ा धन कमा के लाऊं क्या। बाबा कहता है कि कौड़ियों का व्यापार करने जाएगा तो काला बन जाएगा, इसलिए तुमको कुछ करना नहीं है, यहाँ ही रहना है, ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। तो ऐसे ऐसे बाबा उसको जाने नहीं देता था। लेकिन एक बार उनको निमंत्रण आया था तो बाबा ने बोला अच्छा वहां जाना और लिटरेचर छपवाना और सेवा करना और वापिस आ जाना, ऐसा करके उनको भेजा था। तो फिर वो मतलब कि जहां भी जाता था लिटरेचर का काम करता था। उनकी और दो ड्यूटी थी और भी, वो जहां भी जाता था ना तो बाबा इस पूरे पांडव भवन में रेडियो और टैप रिकॉर्ड उनके ही पास होता था, उनके मतलब और किसी के पास नहीं था। तो टैप रिकॉर्ड था ना वो चार प्रकार, मतलब चार था, तो वो चार अंगुली से या चार अंगुली से ऐसे ऑपरेट करता था। उसमें बाबा को जब खांसी आती थी तो इस अंगुली से दबाता था, जब तो ऐसे बंद करना चालू करना वो ट्रिक उसको ही आती थी। सभी उसको कहते थे देखो बाबा की खांसी मतलब आती थी तो टैप में नहीं आनी चाहिए इतनी ज्यादा, तो इसलिए वो दबाता था। तो वो युक्ति उसको ही आती थी। तो बाबा का मालिश करना और ये टैप में सारी मूलियां भरना और सब जगह पे भेजना वो इनकी खास ड्यूटी थी। और कंस्ट्रक्शन का काम वो अकेले नहीं करता था, तो फिर यूपी में से रविदत्त भाई को बुलाया था कि आपको भी साथ में रहना है। थोड़े समय के बाद रविदत्त भाई तो चले गए तो दादा को अकेले को ही करना पड़ा था। तो बाबा के साथ उसकी एक मालिश की ड्यूटी रहती थी, दूसरा लिटरेचर कहीं भी लिटरेचर देना है बड़े बड़े लोगों को देना है तो बाबा उनको भेजता था। फिर कारपेंट्री का काम भी वो देखता था, कारपेंट्री में जो काम होता था वो भी देखता था। फिर ये हमने देखा कि टैप रिकॉर्ड जब चलाता था तो आपने टैप रिकॉर्ड में देखा होगा उनका आवाज सुना था ना, कैसा था आवाज, हमारे जैसा नहीं था, अलग अलग था, छोटे छोटे मतलब आवाज मतलब कि दबके आवाज आता था, ऐसे आवाज तो उसको आ सकता था लेकिन ऐसे आवाज आता था। तो किसी ने पूछा कि चंद्रश दादाजी का आवाज कैसा, ऐसा कैसा है, तो उसको गला का ऑपरेशन जब किया था तभी उसमें कुछ डिफेक्ट रह गई थी तो उसके कारण ऐसा हुआ था। तो मुरली जब भेजना था तो एक बार क्या हुआ कि निर्मल संत दादी है ना वो बहुत बिजी था चंद्रश दादा, और इतना बिजी था सारे दिन काम कर करके थक गया था और सोया था। और बाबा ने बोला निर्मल संत दादी सुबह में जा रही है, उसको मुरली टैप भर के दे दो। अभी टैप भर के कैसे दे दूं, वो कहते बाबा मैं सुबह में दूंगा। बाबा के सुस्त बन गया है क्या, अभी वो ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है, तुम अभी अभी जल्दी उसको दे दो। तो उठ करके मतलब कि बाबा ऐसे चुस्त बना देता था। फिर कहता था कि बाबा के साथ जब वो मालिश करता था ना तो बाबा के साथ बहुत हल्के भी रहता था। तो बाबा के साथ जब मालिश करता था तो बाबा को पूछता था, एक बार तो ऐसा हुआ कि मालिश करते करते बाबा को पूछा कि बाबा आप जब स्नान करते हो तो आप कंबाइन तो होते ही हो, तो कि हाँ, तो स्नान कौन करता है। तो उन्होंने बताया बाबा आप शिव बाबा स्नान करता है, मतलब शिव बाबा को स्नान करने की क्या जरूरत है, लेकिन बाबा आप तो कंबाइन रहते हो तो आप जाते हो तो उनको भी तो कराना पड़ेगा ना, ऐसे हंसी खुशी भी करते थे। फिर बाबा को जब एक बार मालिश करते करते बाबा तो अपनी बहुत बाबा याद में रहते थे, थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया तो मालिश करता ही रहता था। तो जब भी बाबा को ध्यान आया कि टाइम हो गया है तो उसको बोला बच्चा जा जल्दी तुम्हारा टाइम बहुत हो गया। बाबा के तो चंद्रश दादा ने जवाब दिया बाबा ये जो है ना आप उसमें तो डबल इंजन चलता है, जितनी भी मालिश करूं जितना भी यहाँ आपके साथ बैठूं मुझे तो अच्छा ही लगता है, तो इसलिए मुझे कोई हर्जा नहीं जितना भी टाइम हो। तो ऐसे बाबा के साथ भी ऐसी चिटचिट चलती थी। एक बार बाबा को स्नान करवाते थे तो बाबा को उन्होंने बताया कि बाबा कहता है कि बाबा के साथ बात करता था कि बाबा देखो सबसे बड़े थे बड़ा भगत कौन है, तो बाबा ने बोला मैं भगत हूँ। क्योंकि मैंने कितना पूजा किया, द्वापर से जो भी पूजा की हमने शुरू की, फिर बाबा इतने मंदिर बनाए, तो सबसे बड़ा भगत तो मैं हूँ। तो चंद्रस दादा के तहत आप बड़े भगत नहीं हो, मैं भगत बड़ा हूँ, क्योंकि आपने जो भी किया ना चढ़गो किया है, जड़ की रोटी चढ़ाई आपने, तो जड़ की पूजा की है। लेकिन अभी मेरे सामने तो देखो दो दो चैतन्य है, और मैं है ना तो रोटी नहीं, पूरी बाल्टिया गरम गरम पानी की बाल्टिया डालता हूँ। तो सबसे बड़ा भगत कौन हुआ? तो बोला सबसे बड़ा भगत तो तुम ही हो। तो ऐसे चिच्चर भी बहुत ही मतलब की करते थे। तो एक बार है ना, तो बाबा को दूध की, गाय के दूध की जरूरत पड़ती थी, तो गाय लानी थी, तो वहां सिरोही के उस वहां से गाय लाए। तो एक गाय तो थी, लेकिन वो थोड़ी ऐसी, उसका दूध नहीं निकलता होगा, तो दूसरी गाय लाए ना, तो पूरी उस वहां से जब लाते थे ना ट्रक में, उसको चढ़ाया, चढ़ती नहीं थी, बिल्कुल ही नहीं चढ़ती थी, उसको बहुत जबरदस्ती से चढ़ा के लाया और लाके यहाँ रखा ना, बांध के रखा। रात को है ना कैसे भी करके भाग गई, भाग गई। तो सुबह में बाबा ने देखा कि वो गाय, चंद्रस दादा को बोला ये गाय कहाँ गई? बोला गाय तो भाग गई। कहाँ गई अभी, भाग करके कहाँ गई? तो फिर दूसरे तीसरे दिन वो जो जहाँ से वो भाई था ना, वो गाय लेके आया कि गाय भाग के आई, इसलिए वो फिर ट्रक में बिठा के लाया, क्योंकि उसकी खुद की थी तो वो ट्रक में बैठेगी ना, तो लाया। तो बाबा ने कहा देखो ये जानवर भी देखो, अपना घर मालिक को भूलता नहीं है, और आप बच्चे देखो सामने होते हुए भी अपने बाबा को भूल जाते हो, घर को भूल जाते हो। ऐसे बाबा ने ज्ञान भी बात देते थे। फिर बाबा कारपेंटरी में जब काम करते थे, चंद्रस दादा जी जब कारपेंटरी का डिपार्टमेंट संभालते थे, तभी जितने भी लोग थे ना, उसका एक अनुभव है कि कभी भी बाबा को दादा, चंद्रस दादा को बोलते थे कि हमको ये चाहिए, तो वो ना कर देते थे, ना कर देते थे, तो ना कर देते थे। तो काम, तो ये जो कंप्लेन थी ना, तो बाबा के पास भी गई, बाबा जब थे तब बाबा के पास भी जाती थी, बड़ी दीदी के पास भी जाती थी। तो बाबा ने कहा कि चंद्रस जब ना कहता है तो हाँ समझने का। और फिर बाबा तो ब्रह्मा बाबा ने तो सर छोड़े, उसके बाद बड़ी दीदी, तो उसी समय इकोनॉमी भी बहुत थी, और घर के जो बच्चे थे ना वो भी अलग प्रकार के होते हैं ना, कोई भी चीज बनाई नहीं अच्छा लगा तो छोड़ दिया वो। तो उसी समय क्या हुआ था कि बड़ी दीदी को भी कहते थे कि दीदी हमको ये चंद्रस दादा मना ही करता था, कितना हमको जरूरत है। तो बड़ी दीदी जाती थी, देखती थी कि बराबर काम, उसको जरूरत है कि नहीं है, नहीं है तो कोई एक छोटा छोटी चीज भी नहीं बनाने देती थी। तो बराबर सीख गया था चंद्रस दादा, तो इसलिए, लेकिन जरूरत थी तो बना के देता था। तो चंद्रस दादा की एक ऐसी मतलब की एक आदत ही थी कि कोई भी जाएगा सबसे पहले मना कर देगा। तो फिर बड़ी दीदी भी कहती थी मना करता है इसका मतलब करेगा, चिंता नहीं करने की। आज उसके कान में बात गई और सुनता बराबर था, लेकिन उसके बाद बराबर सुनने के बाद मना करता था। तो हमने भी एक बार दादाजी को पूछा था कि ये आप मना कर, क्योंकि हमने भी पलंग बनवाया था, तो मना तो कर दिया, लेकिन जब बन के आया तो मैंने बोला ऐसे आपने मना कर दिया, और दो तीन मास के बाद तो बन के आया। तो बोला देखो मैं है ना तो इन लोगों को देखता हूँ कि जब भी कोई मेरे पास आता है ना, तो मैं तुरंत ही निर्णय नहीं लेता हूँ, मुझे मालूम है इसको चाहिए, फिर देखता हूँ उसको जरूरत है कि नहीं है, दो चार बार आता है कि नहीं आता है, जरूरत होंगी तो आएगा, नहीं होता तो नहीं आएगा। फिर कमरे में जाते थे, रास्ते में जाते चलते चलते पूछ लेते थे, तो आएगा तो मालूम पड़ जाएगा कि उसको जरूरत है, नहीं होंगी ना तो ऐसे ही फालतू मांगा होगा, जरूरत नहीं है तो। तो मैंने बोला नहीं नहीं कहीं तो ऐसे होते हैं ना, तो थोड़ी उनको ये होता है कि एक बार मना किया कौन जाए, कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये घर में है ना एक दूसरे को देखते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, इसलिए तीन चार मास में राह दिखता हूँ, बनाता जरूर हूँ, ऐसा मना नहीं है। लेकिन फिर क्या करते हैं कि अगर दूसरे को देखेंगे कि इसका टेबल तो बहुत अच्छा है, मेरा टेबल अच्छा नहीं, तो फिर मुझे कहेंगे कि मुझे तो ऐसा चाहिए, तो बहुत तकलीफें होती थी। इसलिए मैं है ना तो तीन चार मास उसको मतलब कि बराबर उसके बुद्धि ठिकाने बराबर आ जाए तब तक मैं काम नहीं करता था। तो मतलब कि वो अपने इकोनॉमी से चलना है तो ये भी करते थे।
फिर बाबा के साथ आना जाना तो रहता ही था, जहां भी जाते थे टैप रिकॉर्ड भर के जाते थे। और एक ड्यूटी उनकी रहती थी शाम को रात्रि को समाचार सुनाना, वो कुछ और ये रेडियो तो सुनते ही थे, अंत तक उन्होंने रेडियो सुना, सुनते थे समाचार सुनते थे। लेकिन एक ड्यूटी बनाई थी बड़ी दीदी ने कि जो भी समाचार होता है लड़ाई का समाचार, उस समय लड़ाई बड़ाई चलती थी, उसका समाचार आपको सुनाना है तो 10 मिनट रात्रि क्लास में सुनाते थे। फिर ऐसी बीमारी में हमने एक बात सुनी थी, हम अहमदाबाद में थी तो एक महारथी भाई भी आया था और वो अनन्य भाई था जिसको हार्ट का तकलीफ भी थी। और वो उसके बाद चंद्रास दादा भी वो 3-4 दिन के बाद जब आए थे तो उनको भी थी। तो जब भी उनका ऑपरेशन करना था वो अनन्य भाई जो महारथी भाई था तो वो उनको बहुत ज्ञान था, इस शरीर का ज्ञान बहुत पढ़े हुए थे तो उनको मालूम था। तो उसकी 80% ब्लॉकेज था तो क्या होगा, बहुत सारा तकलीफें होती थी ऑपरेशन करेंगे तो बहुत ही चिंता में रहते थे। तभी हम टेलीप्रिंटर चलाते थे तो हमारे पास आए वो, बोला मैंने बोला आपका तो ऑपरेशन है 2 दिन के बाद। तो उनका थोड़ा चेहरा बीमारी में थोड़ा चेहरा ऐसा हो ही जाता जैसा भी हो, तो बोला हाँ मेरा ऑपरेशन है तो आप मैसेज भेजो ना दादी को कि ये 2 दिन के बाद मेरा ऑपरेशन है, ये इस हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो थोड़ा मुख थोड़ा ऐसा हो गया था तो मैंने बोला कि आप तो इतने बड़े हो ना, आप इतनी महारथी हो ना, आपकी स्थिति तो ठीक रहनी चाहिए। तो बोला ये पारासीसी आपके पास, आपको मालूम पड़ जाता है, देखो आपके पास सब पेशेंट तो वहां से आते थे, मैसेज भेजते थे। तो बहुत ही उनको तकलीफ होती, लेकिन चंद्रास दादा जब आया तो उनका 90% ब्लॉकेज था, लेकिन उसको ज्ञान नहीं था ना शरीर का इसका प्रकार, तो इतना चलते फिरते रहता था, वो बहन जो बनाती थी वो खा लेते थे। हाँ तो लेकिन उसकी स्थिति इतनी ऊंची थी, इतनी अच्छी थी, तो मैंने बोला आपका तो 90% ब्लॉकेज था, आप कितना हंसते फंसते रहते। तो क्या है वो डॉक्टर क्या करेगा, चिरेगा, ये जो भी करना है करेगा, हमारे को उससे क्या है, शरीर के साथ हमारा क्या है, ये सब कुछ है, अगर हम चले गए तो चले गए बाबा के पास, मतलब इतना निश्चिंत था। मैं वो 90% ब्लॉकेज तो बहुत है, तो हार्ट का उसी समय तो ऑपरेशन बहुत मतलब तैयार होता था। तो कहते कोई बात नहीं, अभी कोई कुछ नहीं होगा। और ऑपरेशन जब कराने के बाद भी हमने देखा कि उनकी स्थिति इतनी ऊंची थी, तो बाबा के साथ रहते रहते उन्होंने ये भी मतलब कि कैसे अपनी स्थिति को अच्छी रखनी वो भी सीख लिया था। फिर एक बार है ना तो बाबा भी बाबूजी को एक बार, क्योंकि मजदूर सब बाबूजी कहते थे तो बाबा भी बाबूजी कहा, तो उनको शर्म लग गई कि बाबा है मुझे बाबूजी कहता है। तो वो कहते हैं बाबा मुझे बाबूजी नहीं कहो, बोला कि नहीं सब बाबूजी मेरा बाबूजी। बाबूजी ने 2 मजदूर रखे थे और मजदूर के नाम रखे थे बॉम्बे और पूना। तो बॉम्बे और पूना रखे थे, तो जब भी उसको बुलाते नाम से कभी नहीं बुलाए, बॉम्बे और पूना उसी रीति से ही उसको बुलाते थे। तो बाबा ने कहा कि देखो ये चंद्रास ने नाम कितना अच्छा रखा है बॉम्बे पूना, जिस बॉम्बे को याद करते रमेश सोसा याद आ जाती है, ऐसे मतलब हंसी हंसी में कहते थे। तो ऐसे बाबा ने जब अंतिम समय था तो बाबा के साथ वो रहे थे, तो एक बात बाबा को बात करते थे, जब घर बनाना होता ना कंस्ट्रक्शन काम, तो उसके बाम्बू की जरूरत पड़ती, बाबा को बोला बाम्बू की जरूरत है, बाबा तो इतना उपराम था ना बाम्बू भूल ही गया कि बाम्बू क्या है। तो बोला बच्चा बराबर सुना नहीं बाम्बू मंगवाना है तो हमेशा तो मंगवाते है, तो इतनी लास्ट समय में इतने बाबा उपराम थे। तो ये बाबा और बाबूजी का जो रिश्ता था ना वो इतना गहरा था कि सब प्रकार की बातें सब प्रकार की रूढ़ियां करते थे, और बहुत रमणीकता था जीवन में, और बहुत दर्द वो दुख से आए थे ना तो बाबा उनको बहुत संभाल करते थे, बाबा उनकी बातों को उनको बहुत सुख दिया। तो बोला बाबा की गोदी में आके बहुत सुख मिला, लेकिन चंद्रास दादाजी उनकी नियम मर्यादा उनका निश्चय बुद्धि उसमें बहुत ही था। तो हम सब ये पूर्वज की बात जब सुनते हैं तो सिर्फ सुनना ही नहीं है लेकिन उनका जीवन जो है उसमें उन्होंने जो पाया है वो भी हमें थोड़ा लक्ष्य रखना है कि हम भी वो पा ले। ओम शांति।